राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 दिसंबर 1992 को दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बहुत महिमा गाई गई है। कबू की करि करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान कभी कृपा करते हैं तो ये मनुष्य देते हैं, उसमें क्या कहा है, कब वो की करी करुणा, भगवान कृपा करके और मनुष्य देते हैं। और भगवान का स्वभाव बताया कि कब वो करी करुणा नर देही देत इस दिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह तो बिना हेतु स्नेह करते हैं, इसमें कृपा भरी है, बिना कारण कृपा करते हैं, कारण रहित दयाल कृपा करते सोते हैं। तो कृपा करके मानव शरीर देते हैं कौन, कि बिना हेतु कृपा करने वाले। तो अच्छे ऊंचे लोग देते हैं वो तो कृपा पूर्वक है, और मनुष्य शरीर है बिना कर्म हेतु करने, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके देते हैं, तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति में दुगुनी कृपा हुई। एक तो कृपा स्वभाव है और एक विशेष कृपा करके फिर देते हैं। तो इसमें क्या बात है, क्या विलक्षणता है, उसने बताया है। ध्यान दें, मनुष्य की प्राप्ति के बाद यह चाहे जिधर जा सकता है, परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है और स्वर्ग आदि के लोकों में जा सकता है, जो भोग भूमि है, और मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकता है, और पशु पक्षी आदि 84 लाख जोड़ी में जा सकता है और नरकों में जा सकता है। इसकी इतनी स्वतंत्रता बताई है कि नीचे से नीचे जो ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है, वो अधिकार दिया परमात्मा से। तू कहीं प्राप्त करे उसके लिए तो भगवान ने विवेक दिया है, विवेक शक्ति दी है, और स्वर्गादि भूमियों में जाने के लिए भगवान ने कर्म शक्ति दी, करने की शक्ति दी है, और परमात्म तत्व को प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना, भगवान के दर्शन प्राप्त करना, उसके लिए भगवान ने मांगने की शक्ति दी है। आप ध्यान देकर सुनो, तीन शक्तियां भगवान ने दी है। एक मानने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, एक करने की शक्ति। याद कर लो इसको, भगवान ने ताकत दी है, करने की शक्ति दी है, जानने की ताकत दी है और मानने की दी है। तो जानने की शक्ति दी है उस तत्व ज्ञान के लिए, परमात्मा तत्व को हम जाने कैसे जाने, तो जानने की शक्ति भी दे दी। और करने की शक्ति दी है कर्मों की, उस कर्मों ने, कर्मों में तीन गतियां होती है, ऊर्जं गच्छन्ति सत्त्वशः कर्मणा सुकृतिः स्यात् सात्विकं निर्मलं फलम्। सात्विक कर्म का फल है ऊंचे लोगों को जाना, और रस तस् फल रज है मध्य तिष्ठन्ति राजसा, तो रजोगुण वाले हैं वो कर्म करके मध्य लोग में रहते हैं, और निकृष्ट कर्म करके अधोगच्छन्ति तामसा। चौदह अध्याय में अठारहवें में आया है, तो इन 14-15 दो श्लोकों में आया है। गुरु के कारण से इसका सदा सदियों जन्म, ये 13वें अध्याय में कही है। सदा सदियों जन्म उसे निज क्रम में जन्म होता है। तो इस तीन लोगों में जाने के लिए, घूमने के लिए कर्म शक्ति दी है। उन कर्मों से आप नरकों में जा सकते हैं, कर्मों से 84 लाख भूमि में जा सकते हैं, स्वर्ग आदि भूमि में जा सकते हैं, और उसी कर्म को अगर निष्काम भाव से किया जाए तो आपको तत्व ज्ञान हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। तो कर्म शक्ति एक दी है, और जानने की शक्ति दी है आत्मज्ञान के लिए, तुम स्वयं क्या हो इस जानने के लिए भगवान ने ज्ञान शक्ति दी है। और परमात्मा तत्व क्या है इसके लिए मानने की शक्ति दी है। जानना कहाँ होता है, कि जहां कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते वहां जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। कुछ नहीं जानते उस विषय में जिज्ञासा नहीं होती, ये उस जिज्ञासा के अनुसार जान सकते हैं। ये जानने की शक्ति भगवान ने दी, इसमें एक गहरी बात है, थोड़ा ध्यान देगा आप उसमें, कि हमने पुस्तकों में सुना है बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्मों के अनुसार होती है। तो कर्म करते हैं उससे हमारे को ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, बुद्धि से ज्ञान होता है। तो कर्मानुसार नहीं होती है, कर्म अच्छे करने से उनको अच्छा ज्ञान होता है, कर्म निकृष्ट करने से, पूरा कर्म करने से अधोगति होती है। इसमें गहरी बात अब बताता हूं, वो ध्यान देने की है, कि अच्छे कर्मों का फल ज्ञान होता है, तो अच्छे और मंदे का दोनों का ज्ञान किसने हुआ? अच्छे कर्मों का फल ज्ञान होता है, तो इन ज्ञान से पहले कर्मों के दो विभाग है, अच्छे कर्म एक बुरे कर्म। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों जानेंगे तब ना बुरे कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। तो ये ज्ञान पहले चाहिए, पीछे कर्म होंगे। तो कर्मों का कारण पहले विवेक है, जिस ज्ञान से अच्छे और मंदे दो ज्ञानों, दो कर्मों का ज्ञान होता है, तब बुरे छोड़कर अच्छे काम करेंगे। तो वो ज्ञान किससे हुआ, वो कर्मों से हुआ तो कर्म जो शुभ और अशुभ का ज्ञान पहले होना चाहिए। ये बात है गहरी थोड़ी सी। तो शुभ कर्मों का फल होगा तो शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञान पहले होना चाहिए। तो ज्ञान पहले मानना पड़ेगा, उसके बाद में शुभ अशुभ कर्म होंगे। शुभ कर्मों का फल अच्छा हुआ तो शुभ अशुभ कर्मों के दोनों को जानने का ज्ञान पहले होना चाहिए। वो ज्ञान कर्मों से नहीं होता है, वो कर्म उस नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ है। विवेक ज्ञान किसी कर्म का फल नहीं है, ये भगवत कृपा का फल है। और भगवान को नहीं मानते उनके लिए भी ऐसी बात है कि वो स्वाभाविक प्राकृत है, प्रकृति से प्राप्त होता है, वो ज्ञान होता है। जैसे अशुभ कर्मों के कारण इस जीव को पशु जोड़ी मिलती है, गाय भैंस भेड़ बकरी ऐसे पशु को मिलते हैं, तो इनमें भी ज्ञान रहता है। गाय में भी ज्ञान है, भैंस में भी ज्ञान है, ऊंट में भी ज्ञान है, भेड़ में भी ज्ञान है, बकरी में भी ज्ञान है। जो ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराते वो नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति इनको हुई है, गजेंद्र को हुई है, काकभूषुणी को हुई है, गरु जी को हुई है, हनुमान जी है, निषादराज है, उनको हुई है, हनुमान जी को हुई है, झाड़ू बंदरादिक में भी और हाथी में भी ऐसा ज्ञान हुआ है, सब गजेंद्र मोक्ष आता है। तो वो बात एक और है, स्वाभाविक ज्ञान मनुष्य जन्म में है और शरीरों में ज्ञान है, तो जिस ज्ञान से मुक्ति हो जाए वो ज्ञान नहीं है। तो क्या ज्ञान है? खाने पीने का ज्ञान है। ऊंट कितना ही भूखा हो परंतु आग नहीं खाएगा, भैंस कितनी भूखी हो आग नहीं खाएगी और भेड़ बुरी खा लेगी, बकरियां खा लेती, भेड़ा खा लेती है, बकरी बड़ी राजी होती है, आग मिल जाए पसंद होती है। तो आग हित करे अहित करे इसका ज्ञान ऊंट को भी है। भैंस अगर आग है उनसे ऐसे अपनी खुजली भी करते रग रहेगी, आग लग जाएगा तो भैंस सूझ जाएगी, आग सट जाता है, भैंस को बहुत जल्दी आग सटता है, मैंने देखा हुआ। तो ऐसी जहरीली चीज वो खाएगी नहीं, भैंस नहीं खाएगी। तो ये ज्ञान तो है ना, ये खाने का ये नहीं। इस बात एक कहावत है मारवाड़ी, ऊंट छोड़ो आग, बकरी छोड़ो ढाक, बकरी ढाक नहीं खाती, ऊंट आंख नहीं खाता, क्योंकि ये उनके लिए बढ़िया नहीं चीज है, ये उनके लिए हानिकारक है। तो ये ज्ञान उसको भी है, भी ये हमारे खाने के, ये खाने के नहीं है, ऐसा ज्ञान तो उनको भी है। परंतु जीव का कल्याण कैसे हो मरने के बाद में हमारी सदगति हो, ये ज्ञान नहीं है। गाय सबसे उत्तम मानी गई हमारे दर्शन मात्र से, उनका दर्शन मात्र से पुण्य होता है, फल होता है। हमारे लिए एक बहुत विलक्षण बात है, विवाह करना हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया सावा देखना पड़ेगा, मुहूर्त देखना पड़ेगा, उस मुहूर्त में ब्याह होता है। और वो नहीं हो तो गुजर के हम ब्याह कहते हैं, गुजर के हम ब्याह हो जाए। गुजर गया अर्थ क्या है? गोधूली का, जिस वक्त में गाय आवे बाहर से गांव में उसमें मैं रज्जी घुसी है, वो गोधूली है। तो गोधूली के समय ब्याह कर दो, गायों के खुरों से उड़ी हुई रज्जी है वो उस समय बड़ा बढ़िया है, उत्तम बढ़िया है। क्योंकि रज्जू उड़ने का समय भी बढ़िया है, बिना सारे भी समय ब्याह कर दो तो गौ कितनी उत्तम है। हरेक का मलमूत्र खराब होता है, पर गाय के गोमूत्र में गंगा जी निवास करती है, गोबर में लक्ष्मी जी निवास करती है। किसी का मरना हो जाए, किसी के बालक हो जाए, उसके पीछे काम करना होगा, शुद्ध करना होगा, तो गोमूत्र रहो, वो गांव घर में चिर दो, शुद्ध हो जाएगा। बालक का भी नामकरण होता है, गाय के गोबर का चोपा लगाया जाता है। बछड़ा पैदा होता है, 10 दिन हो गए बछड़े को, 12 दिन हो गए, अब दूध को काम में लेंगे तो बछड़े के लिए भी सूर्य पूजन होता है, गोबर का चोपा लगाया जाता है। तो ब्याह आदि में जनेऊ आदि में जनेऊ धारी है ब्राह्मण को, तो पंच गव्य भोजन कराते हैं, खाने में एक उपवास कराते हैं, और गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, सहजोर मिश्री, ये जो गोमूत्र और गोबर ये पांच गव्य है, वो पंचामृत है, ये पंच गव्य है, गाय से ही पैदा हो, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, ये पंच गव्य है, ये खिलाया जाता है तब वो पवित्र होता है, जनेऊ लेने के लायक होता है। कितनी विलक्षण बात, किसी का भी मलमूत्र प्यारा नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। गाय का इतना शुद्ध होता है कि जिसमें ब्राह्मण का बालक भी जनेऊ लेगा तो पंच गव्य खाना पड़ेगा, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, ये पांच, ये पंच गव्य है, इनसे पवित्र होता है, जनेऊ लेने का अधिकारी होता है, जिससे वेद पढ़ने का अधिकारी हो जाए उसमें भी इतनी पवित्रता है। तो गाय में कितनी पवित्रता है क्या कहे, गोदान का बड़ा पुण्य आया है। और जहां गाय बैठती है तो आपने देखा होगा, गाय बैठेगी ऐसे फुंकार करती, बैठ करके श्वास लेती, सोरा श्वास लिया आराम से, तो शास्त्र में लिखा है कि गाय का जो फुंकार होता है अनेक कर्मों की पाप नष्ट हो जाते हैं जिस जगह गाय बैठती है, तो वो गौ पवित्र हो जाती। भगवान कृष्ण की बात तो आपने सुनी होगा, भागवत सुनाई होगा, गर्गाचार्य आए भगवान का नामकरण करने के लिए, बालक का नाम क्या रखे, हम तो सब ब्राह्मण को बुलाओ, कोई मर जात ब्राह्मण बुलाओ, जन्म जात ब्राह्मण बुलाओ, व्याकरण ब्राह्मण को बुलाओ, शास्त्र में ब्राह्मण को बुलाओ, सब ब्राह्मण आवे वो काम करे। तो उनको नामकरण करने के लिए इस लाला का नाम क्या रखा जाए, तो गौ के बारे में नामकरण हुआ है कृष्ण भगवान का। पवित्र जमीन कौन सी मानी जाए, जहाँ गऊ का पैरा हो, गऊ रहती है, गोबर और गोमूत्र जहाँ होता है वो जगह महान पवित्र मानेंगे, शुद्ध मानेंगे। तो कितने गऊ पवित्र है, परंतु परमात्म तत्व का ज्ञान गऊ को नहीं हो सकता। किसी कारण से हो जाए तो हाथी को गऊ होने में कोई बात नहीं है, परमाधिकारी नहीं है। मनुष्य को वो ज्ञान करने की शक्ति दी है भगवान ने, जानने की शक्ति दी है। अगर ये मनुष्य चाहे तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवान के दर्शन कर सकता है, भगवान के सामने प्रकट हो सकते हैं, ऐसी ताकत भगवान ने दी है। ये कर्मों का फल नहीं है, ये जो ज्ञान है ये कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल तो नाशवान होता है, एक ज्ञान होता है अविनाशी, उसका नाश नहीं होता, यद ज्ञात आना पुनर्मोह में श्री पांडव, जिस ज्ञान के जानने के बाद इस प्रकार का फिर मोह नहीं होता, फिर हुआ ही नहीं। यद भूतान्य से तो ऐसा ज्ञान भगवान की कृपा से होता है, उसके बाद जानना कुछ बाकी रहता नहीं। इस बात में जानने के बाद फिर ज्ञातव्य ना शिष्य से। और लिखा है कि जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद और कोई लाभ बाकी नहीं रहता, और जिसमें स्थित होने पर गुरुना भी दुखे न विचारने से गुरुचर दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता, ऐसा महान आनंद उस परमात्मा की प्राप्ति में है। उस परमात्मा की प्राप्ति का ये अधिकारी इस बात से रामायण में आया है। काल भूषण जी ने गरुड़ जी को रामायण सुनाई तो गरुड़ जी ने प्रश्न किया है, सात प्रश्न है तुलसीकृत रामायण के उत्तर कांड में आता है। उसमें पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो बताया कि भाई सबसे दुर्लभ मनुष्य भी, सबसे बड़ी दुर्लभ मनुष्य ही दुर्लभ है। वो मनुष्य भाई हो चाहे बहन हो कोई ज्ञान हो, मनुष्य शरीर है। इस बात में भाइयों को भी वो तत्व ज्ञान हो सकता है, बहन माताओं को भी वो तत्व ज्ञान हो सकता है, भगवान भक्ति हो सकती है, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कई ऐसी भी माताएं गांव में रहने वाली कर्मा भाई पूरी भाई जात हुई पूरी भाई जागरण में रहने वाली थेपड़ियां सुखाई थी थेपड़ी, तो थेपड़ी सुखाती गोबर में घर में और क्या करे, पड़े पड़े कुछ नहीं। अब गोबर थापने वाले कितनी बड़ी ज्ञान वाले होगी, बुद्धि वाले होगी। परमात्मा का प्रेम था उसके भीतर, लोग आदर करते थे उनकी, कथा कहते हैं हम सत्संग में बड़े बड़े पंडित कथा कहते हैं पूरी भाई। तो पूरी भाई को जोधपुर के जोधपुर बुलाया दरबार में, वो क्या बात हुई, एक बार जोधपुर की फौज जा रही थी कहीं, छोटी टुकड़ी थी फौज की, तो पीछे पूरी भाई ने कहा रोटी खाओ, तो एक छोकरा भैया के साथ सबने दे दिया, जितने थे फौजी लो बेटा खाओ भोजन करो समझे। अब भैरव साहब बाद सीधो भोजन अपना झट वो भोजन चाहिए भाई समझे, क्या करे खास खीस और खाटो के जमन भोजन झाटो तो झाटो भोजन है फल और साग और शोर खाओ, तो उन पर असर पड़ा कि इतने आदमियों को दे दी रोटी करो तो बनाई है कितनी रखी है, बड़ा असर पड़ा। तो दरबार ने बुलाया देखा तो उनकी बहुत विलक्षण बात है, ऊंचो ऊंचो गागरियो पहन कोडा नीचे नीचे ऊंचो ऊंचो गागरियों में वो धाबलो पहन ऊंचो ऊंचो बुलाई साहब दरबार में रणवास में भेजे कि रानियों के लिए सत्संग मिलता नहीं, अच्छे महात्माओं को मिलने कहाँ आए, पर्दे में रहने वाली बाहर जा नहीं सकती, सत्संग मिल नहीं सकती, मैंने भेजी वही साहब। तो देखिए रानियों ने तो खूब गहरा पहनना है, बढ़िया बढ़िया रेशमी कपड़ा पहनने के बड़े बड़े पीढ़ाओं के ऊपर बैठी है। तो पूरी बोली गणो गांठो तन की शोभा और काया का सो भांडो, पूरी थाने यू के राम जो रांडो सीधी भाषा रांडो बेटी कही करो राम राम करो अपनी भाषा ही से अपनी भाषा से यू बोले बस तो गहनो गोटो तन की शोभा कया का चो भानो कया का चो भानो पूरी तरह यूं कहे थे राम जो रंडो बैठे तो राम राम करो अच्छा बुरा नहीं माना। अरे पूरी भाई तो बड़ी ऊंच देते कि भगत सी मैं तो कई बार कड़वी कड़वी बातें कहता हूँ पैसे वालों को बड़ी कड़वी बात कहता हूँ और कहता था पैसे के समान में कृष्ण कोई चीज ही नहीं और धनी आदमी सुनते हैं अजीज नहीं करते। मैं जोर जोर से कहते क्या कर रहे हो क्यों नरकों में जा रहे हो इतनी कड़ी बातें कहने पर भी फिर आप सुनने को आते हो नहीं तो गाड़ देने वाला कौन आ गया महाराज गाड़ी सुन के उसकी तो सुनते क्यों सुनते हो कि नियत देखते हो मेरी नियत आपको गाली देने की नहीं है अपमान करने की नहीं है दुख देने की तिरस्कार करने की नहीं है नियत कल्याण करने की है तो इसमें कड़वा बोले तो बुरा नहीं लगेगा। जब हमें जाते हैं तो गालियां गाती है अब कैसी कैसी गालियां गावे और सुनते हैं हंसते हैं किस समय में रोटी खाओ तब अब गाली देकर रोटी खानी पड़े रोटी खाओ कोई गाली नहीं। एक लड़के की बात है उसकी स्त्री ने कहा कि सारी माँ है आपकी माँ में गाली देती है तो दूसरों को कोई बात नहीं सुन गए तो सुन ले कि गाली दे माँ ने गाली दे देख तो सुन मारी बात मैं जब तेरे को ब्याह करने के लिए आया बरात लेकर के तो हम रोटी खा रहे थे उसमें जवान जवान छोरियों गाली दे रही थी मेरी बात बूढ़ी है बूढ़ी है जवान जवान छोरियों गाली आते हुए मैं सब सुनी क्यों सुनी तू बता केवल तेरे कारण सुनी तो कारण बता कोई गाली दे देख लू उसको खबर दे दू मैं तेरे पीछे मैंने सुनी गालियां अब मेरी बूढ़ी माँ कभी गाली से हरदम गाली तो देती नहीं कभी सीख दे है तो वो जो कर्जा से गया है ब्याज से इतना पीछा मेरी बूढ़ी माँ गाल दे सुननी पड़ेगी तेरे मैंने सुनी है ना तेरे वास्ते सुनी है तो मेरे वास्ते तू सुन थारे सुने और मैंने क्या गलत थी बताओ कौन गाली दे दे मेरे क्यों दे दे गाली क्यों तेरे लिए सुनी तो मेरे लिए तू ही सुन रहा है ब्याज से कितनी है बता कितना दिन हो रहा है तो ब्याह की गाल से लोग नाराज नहीं होते क्यों नहीं होते कि गाली देने में उनका द्वेष नहीं है बैर नहीं है वो भीतर में अपनापन से देती है तो विवाह में गाली भी अच्छी लगी। बाबा संग्राम दास महाराज ने कहा है 80 वर्ष को डोकरो जाए जगत की जान ब्याह की गायों सुने कर ऊंचा खान कर ऊंचा कर मान को मारो मर है जो नहीं देवे काल जाएगा उसमें जड़ है लड़ाई कर मन गाल क्यों नहीं गई टको पैसा खर्चता रखे अपनो मान 80 वर्ष डोकरो जाए बिहार जगत की जान तुम्हारा घर सुने राजी हो करके तो मतलब इतने का भाव है तो भाव अच्छा होते हुए गाल भी बुरी नहीं लगती क्योंकि उनका कोई अपमान करना नहीं है, तिरस्कार करना भाव नहीं है, दुख देने का भाव नहीं है, विनोद है, उसे प्रसन्नता होती। भगवान राम जी का ब्याह हुआ तो राम जी को भिखारी थी, गोस्वामी जी कहते मजबूर, गोस्वामी जी कहते मजबूर धुन से घाल दिए, खाओ राम जी रोटा थारे ब्याह में गणेश जी मोटा, थारे जानी है मोटा आया है, खाओ राम जी लपसी थारे जान में शंकर तपसी, बताओ राम जी उड़ी खा और खाओ राम जी लाडू तो तू चालू भाई साडू, ऐसी ऐसी गाला गावे, राम जी सुने शिवराज सुने इस तरह से गाला देव तो उनसे प्रेम आता है। कार की नीयत अच्छी, ऐसे आप नीयत अच्छी रखो तो कितना काम ठीक हो। तो भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है तो मनुष्यता क्या है। आज एक पोथी मैंने पढ़ा कि जो भैर रखते हैं द्वेष रखते हैं वही तो नीचे है ही, सकाम भाव से कर्म करते हैं अपने स्वार्थ के लिए वे भी मानव नहीं मनुष्य नहीं है। अपने लिए स्वास्थ्य में काम करे, दान करे, तप करे, तीर्थ करे, जप करे, अपने भोगों के लिए सुख के लिए तो मनुष्यता क्या है। आज एक पोथी मैंने पढ़ा कि जो भैर रखते हैं द्वेष रखते हैं वही तो नीचे है ही, सकाम भाव से कर्म करते हैं अपने स्वार्थ के लिए वे भी मानव नहीं मनुष्य नहीं है। अपने लिए स्वास्थ्य में काम करे, दान करे, तप करे, तीर्थ करे, जप करे, अपने भोगों के लिए सुख के लिए ये कौन है। कुछ दृष्टांत दिया है, हिरण्याक्ष था राक्षस, उसने तप किस लिए किया कि मैं जीता रहूं मरूं नहीं, इस उद्देश्य के अंतर तो वो राक्षस हुआ। इस वजह सकाम भाव से यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, वही राक्षसी वृत्ति है, मानव वृत्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है, राक्षस मनुष्यों में गणना नहीं होती उसकी। और उसने ऐसा विचार किया कि मेरे को कोई नहीं मार सके, ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई जंतु मेरे को मार नहीं सके, ना मनुष्य मार सके, ना पशु मार सके, ना दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना ऊपर मार सके, ना नीचे मार सके, ना शस्त्र मार सके, ना अस्त्र मार सके, ना गीला मार सके, ना सूखा मार सके। अपनी तरफ से इतना प्रबंध कर लिया कि मरूंगा ही नहीं, पर भगवान बीच में बात निकाल दी, ऊंचा नीचा किया गया, खोली में कोटर ऊपर ले लिया, अब ऊंचा एक नीचे कटे बीच में गए और दरवाजे के भीतर बैठ गए, ये बाहर एक भीतर है, बाहर मरूंगा भीतर ही मरूंगा, दिन आधा ऊपर आधा ये उगता उसमें दिन के समय में, ना रात में मरूंगा ना दिन में मरूंगा, नखा सुन पूछ गए कही नहीं खोली की मैं नखा सुन नहीं मरू बाकी तो ऐसे सकाम भाव करने वाले यज्ञ करे, तप करे, दान करे, कोई राक्षस ही है। अरे परमात्मा की प्राप्ति के लिए करे, भजन स्मरण करे तो, जप करे तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए, जिसके लिए मानव शरीर मिला है उस काम में लगना है, ये मनुष्यता है। भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हुआ, पढ़ा हुआ हो चाहे अपढ़ हो, कमजोर हो चाहे कमजोर बलवान हो, बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, हर एक अवस्था में भगवान को याद करो। कितनी बढ़िया बात है, ये ज्ञान होता है, जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है, मानने की शक्ति है। तो करो क्या उपकार, दूसरों का हित करो, सेवा करो और त्याग करो स्वार्थ का। स्वार्थ बुद्धि, ममता बुद्धि, इसका त्याग करके सेवा करो। ये दुख जितना होता है मन में कामना से होता है, कामना पूरी नहीं तो दुख होता है, नहीं चाहते वो हो जाता है, चाहते वो नहीं होता। एक गांव में एक ब्राह्मण जी के पास, पुरानी बहुत वर्षों की है, कोई 60-70 वर्ष होया होगा, बहुत पुरानी बात याद आ गई। एक ब्राह्मण भीड़ गांव की बात है, जो बात हो रही थी बोली, गुरी भाई नाम था उसका, कि महाराज कहीं बाग में बलियो है तो जानिया जान तो वही को नहीं। ये बात कहीं बाग में बलियो है, कहीं आग लगी है तो मन समझो तो वही भी नहीं है, जानिया जान तो वही नहीं। महाराज मन हम चाहते हैं जैसा होता नहीं, कहीं तो क्या परमात्मा की शक्ति है, कहीं बाग में बलियो है तो मालूम बड़ी है, जानिया जान वही को नहीं। कितनी बिस्की बात, आप इतने बैठे हो, कोई भाई बहन कह सकता है कि हमारा जानी अनजानी होता है, जैसे चाहते वैसे ही होता है, ये बात है हो जाए ऐसा, कोई हो तो बताओ भाई, हमारे तो ऐसा ही है, घर जाने में हम जानते जो ही होता है, जो चाहे जो ही होता है, हमारा उम्र भर में जो चाहते वही होता है, कोई नहीं कहता ऐसा। ऋषि के स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था, उसमें शेष जयदयाल जी बोले कि हमारा तो मन चाहा ही होता, जो होता सो मन चाहा ही होता। बड़ा आश्चर्य, दुनिया में किसी के मन चाहा नहीं होता, फिर आपके ही चाहने कैसे होता है भाई, ऐसी क्या बात है, आपका नाट ज्यादा रखे भगवान ठाकुर इंसान मन चाह ही करे, कि हमारा जाने जान जैसे चाहते वैसे ही होता है। तो मैंने पूछ लिया कि आपके मन चाहा कैसे होता है, क्या युक्ति है, हम बोलो काम मेले में, तो उनकी व्याख्या करी कि हम अपनी चाहना करते ही नहीं, भगवान की चाहना में चाहना मिलेगी। क्या होना चाहिए, कि भगवान चाहे जो होना चाहिए, अब जो है जो भगवान की चाहना से होता है, अरे भगवान की चाहना में हमारी चाहना तो हमारा चाह हो गया ना। ये तो बताइए, कोई अपने भगवान की चाहना मिलाना चाहे तो राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई, राम ही चाहे वो ही करेगा, और उसे उल्ट फेर करने को किसी की ताकत ही नहीं है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा उल्ट पुलट कर दे, ऐसा नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। तो भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दे, अर्थात अपनी चाह न करे ही नहीं। क्यों चाह न करे, दुख पावे फिर रोवे घबरावे, क्यों दुख पावे, पहले से ये चाह ना के घर से ही होता है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है, परमात्मा का साक्षात्कार अंश है, पर बीच में चाह नहीं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, दो बात है, ऐसे तो होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, पकड़ो। अब अशांति अशांति दुख दुख, कहीं पूछे क्या करो, शांति नहीं है। गीता गति त्यागा शांति निरंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति होती है, तो तत्काल कैसे, कि त्यागा शांति निरंतरम, त्याग की बात त्याग क्या करे, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना छोड़ दे, भगवान करे होना चाहिए। देखो स्वास्थ्य अच्छा कर दे तो भगवान ने बड़ा काम ठीक किया, अरे बुखार है तो वाह वाह भगवान ने बहुत ठीक किया, कि बुखार में ठीक कैसे माने, असर न मानो तो क्या फर्क पड़ेगा, रोओगे दुख पाओगे, बुखार तो आएगा नहीं, कोरा पर दुख पाना हो तो दुख पाओ, क्यों बुखार आ गया। अरे भगवान को छुट्टी हमारा थे बहुत ठीक है, हम मिला, इसके नाम शरणागति है। भगवान के शरण होना सबसे ऊंचा बताया है भगवद गीता में, सर्वगुह्यतम कहा, सर्वगुह्यतम भूये परम वचन, परम वचन है, सबसे गोपनीय है। क्या माम एकम शरणम मेरे शरण हो जा, तो शरण होना क्या, भगवान की हाँ मैं हाँ मिला देना, ठीक है महाराज, घाटा लगे बहुत अच्छा, खूब नफा हो जाए बहुत अच्छा, बुखार आ जाएगा बहुत अच्छा, बुखार उतर गया बहुत अच्छा, घर में बालक जन्म गया भाई बेटा जन्म है अच्छी बात, फिर मर जाएगा बहुत अच्छी बात, पर यू कैसे कही जाए, मर जाए तो अच्छी बात कैसे, अच्छा बुरी बात कह दो तो फिर रुकेगा मरने वाला, होगा तो भाई जो भगवान करे सो ही, तो हाँ वहां मिला दो, भगवान हो जाए राजी, अपना हो जाए कल्याण, या दुनिया के है संत, बताओ क्या नुकसान हुआ। दूसरा आदमी तो कहते हैं कि बड़े संत है सर, ये तो आनंद मनाते हैं, बुखार में आनंद है, बोलो तो अपना दुख क्यों करें। अरे भाई बेटा मर गया वो तो दुख है ही, अब रोने का दुख जाने कर क्यों करे, हो गया जो तो हो गया, अब जान कर फिर दुख करो, बोलता है क्यों दुख करे, ठाकुर जी की मर्जी है, इतना दिन रखना रहा धन चला जाए तो भगवान के तो धन जाता नहीं, भगवान के बेटा मरता नहीं, क्यों भगवान तो उत्तर पति यहां से लिया, वहां जन्म गया, वहां जन्म गया, तो फोन उछल कर दिया ठाकुर जी क्या वो बेटा तो है जो ही रहा, और जगह भेज दिया, धन का घाटा लगा तो इस दुकान से दूसरी दुकान में भेज दिया, अब मालिक की मर्जी हो इस दुकान से कि 5 लाख से उस दुकान में भेज दो, अब मुनीम क्यों नहीं भेजे, अपनी क्या भेजो, सब दुकान सेठ ऐसे सब लोग भगवान के, कहीं मर गए तो कहीं जन्म गया, तो न मरने का दुख होता है न जन्मने का सुख होता है, और भगवान से उथल पुथल करते ही रहते हैं, भगवान का स्वभाव है, एक समाज नहीं रहने देते, एक भगवान की कृपा कबू करी करुणा निर्दे ही देत इस बिन से हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानस ही देते हैं, तो मानव शरीर देते हैं तो मानव शरीर में सुख दुख भी दे देते हैं भगवान, वो जाएंगे तीन चीज जात्यायुर होगा, पातंत्र योग दर्शन में लिखा है शास्त्र में कि तीन चीज भगवान निर्णय कर देते हैं, एक तो जन्म, एक उसकी उम्र और एक उसमें सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी शरीर में जीते जीते आवेगा, ये तीनों करके फिर जन्म देते हैं, तो सुख दुख भी आवेगा, सुख भी आवेगा दुख भी आवेगा, कोई मरेगा कोई जन्मेगा, बीमारी भी होगी स्वस्थता भी होगी, नफा भी होगा नुकसान भी होगा, और समय पर मरना भी पड़ेगा, बस कोई बच नहीं सकता, जन्म नहीं होता नहीं मरना ही पड़ती, तो ये तो भगवान का विधान होगा वैसे, अब उसी में मर जाएगा, अच्छा महाराज हम तो आपके शरण है, आप चाहे जिसका कोई अपराध हो जाए तो दंडवत कर प्रणाम कर दे महाराज, चाहे मारो चाहे तारो आप हो सब, ऐसे भगवान को कह दिया जाए सुख भी दो दुख भी दो, हम तो आपकी मर्जी में, जैसे वैद्य के यहां जाते हैं और दुकानदार के यहां जाते हैं, दोनों में फर्क रहता है, आप कोई फल खरीदेंगे मिठाई खरीदेंगे तो पैसा देखेंगे चखेंगे ये पसंद आए लेंगे नहीं, वैद्य के भी यहां देखाओ दवाई दो अच्छा चखाओ कैसी है सुगंधी कैसी रंग कैसा है ये चलेगी नहीं, वहां तो वैद्य वो लेनी पड़ेगी, तब रोग दूर होगा, वहां आपकी दीप नहीं चलेगी। दुकान पर जाओ, मर्जी आओ सुनो। तो भगवान के यहाँ ये नहीं कि सुखी पहुंचावे दुखी पहुंचावे, वहां तो भगवान जैसा ठीक चाहे वही करेंगे। तो हम क्यों पंचायती करें, हम शिकायत क्यों करेंगे? देखो बैद्य जी ने हमारे कड़वी दवाई दे दी, कुदार दे दिया, कड़वा चिराग त्याग कुटकी है, काटा दे दिया, खा 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 काटा देते है पीते और वैद्य को फीस देते और गुण मानते हो कि महाराज ने बड़ी कृपा की, बुखार के समय हमारे को चिराते का काटा दिया, बुखार उतर गया। अरे बुखार का वैद्य चढ़ा हुआ मुंह खड़ा क्यों करे, फिर दुख पा रहे हैं, ऐसे मुंह भी कड़वा कर दिया, पर गुण मानते हैं क्यों? वहां वैद्य है वो ठीक है, हमारी परीक्षा में नहीं चलेगी कि रंग कैसा दवाई का, स्वाद कैसा है देखेंगे, फिर रंग कैसा चलेगा। तो ठाकुर जी के यहाँ एक घर तो एक रखो, अपनी कहावत है कि एक घर तो डाकर निकाल रहे, भगवान घर तो उठाओ, एक घर तो डाकर निकाल रहे, एक भगवान को खुदा रहना दो, भगवान को छुट्टी दे दो, भगवान को बिल्कुल छुट्टी दे दो कि महाराज आप दुख भेजो, सुख भेजो, अनुकूलता भेजो, दुख भेजो, धन भेजो, निर्धनता भेजो, छोरा भेजो, छोरी भेजो, छोरा मारो, छोरी मारो, आपने खुल दी है महाराज। तो भगवान को आप खुल देते तो भगवान आपको खुल देते, ये था माम प्रपद्यंते थी भजन में हम, कितनी बड़ी अच्छी बात है। भगवान को छुट्टी दे दो, खुल गई तो भगवान तुम्हारे खुल दे, भगत मेरे मुगत बने हूं मैं भगतन को दास, तो आप दास बन जाओ तो भगवान दास बन जाए, कितना सस्ता है बड़ा। कहां भगवान कहां आप और हम, एक के पास में एक रुपया, एक के पास में करोड़ रुपया, वो कहते आज अपने शीर में दुकान कर लो, आधे सारी आधी हमारी, तो थाम को सूखेगा, तुम तो एक रुपया दे दो हम एक करोड़ है, दोनों का शीर में दुकान है और मुफ्त में मुफ्त मिल रही। तो मेरे पूंजी एक रुपया बस एक करोड़ रुपया, ऐसे कहां तो भगवान ने कहा हम, भगत मेरे मुगत मनी, मैं हूं भगतन को दास। भगत तो दास कहते हैं, भगत एक घोषणा जी महाराज न्यारी बात कहते हैं अलग। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास, अधिक राम कर दास, राम जी के दास राम जी से मैं अधिक है, कितनी विलक्षण बात है। इतना दिन घना ही काम किया संसार का, नफो लीजो ले ही नहीं वाले दिन, तो अब अपने विचार को बहुत भजन करेंगे, अब संसार देख लिया, हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखे की चलती है। भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान के मुकुट मणि बनो, अब तो वो व्यापार करो, धन के लिए कर लिया, भोगों के लिए कर लिया, संसार के लिए काम किया, अब थोड़ा ये भी करो, ये भी तो खुद सही है, ठीक है। तो भगवान का स्वभाव है उसमें हाँ में हाँ मिला दो, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, जैसे आप भगवान की मर्जी में खुश हो जाएंगे, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला देंगे तो भगवान आपकी मर्जी में मर्जी मिला देंगे। ये यथा माम प्रति साप कहा, यथा तथा है, तो कितना स्वरूप होता है, एक रुपया और करोड़ रुपया लोग इसका बरबर नरसिंह जी कह दिया ऊंचन से तुम भरमाएर आटो साटो हम भरमाए, भगवान का ठीक है माता ऊंचन से भरमाए तो भगवान 800 ग्राम तैयार, शीर में दुकान करने को तैयार। अब अगर कहीं कटा महाराज जावे बताओ, शीर भी शादी भगवान साथ कहा हाँ महाराज आप हमारे एक शीर, तो भगवान की राजी में राजी हो जाए, तो हमारे मन सही हो जाएगी, हम भगवान की चाह न चाह मिला दे। पति प्रथा की बड़ी महिमा है। पति प्रथा क्या होती है? पति के मन में अपना मन में जा दिया, वो क्या ठीक है, हो ठीक क्यों ठीक हो ठीक। माँ बाप का भक्त होता है वो क्या करता है, माँ बाप कह क्यों करे, माँ बाप की चाह न मिला दे। असली माँ बाप का भक्त होगा उसको मित्र कहेगा कि तुम कल क्या करोगे, तो असली भक्त क्या करूँ मेरे को पता नहीं, कल मैं क्या करूँ मेरे को क्या पता। पिताजी कह दे कोई काम करूँ मेरे को क्या पता क्या करूंगा। बात याद आ गई, शेर जी श्री जयदयाल जी बड़े से संत हो गए हैं, चेतु हुए समय गीता प्रेस में खोला हुआ, गीता की जी से प्रसार हो रहा, पुस्तकों का प्रसार हो रहा, कल्याण का प्रसार हो रहा, मूल में एक शीर्ष जयदयाल जी, इनके मित्र से हनुमान बख्श जी, हनुमान प्रसाद जी पोदार नहीं, हनुमान बख्श जी थे उनके, वो बालकपन में साथ रहते थे, लंगोटिया मित्र, नंगा प्रसाद जब सुनता है उन्होंने, तो से ये भावकुरे विष्णुपुर वहां रहने लग गए। तो वहां एक घटना घटी, सूर्य से तार आ गया कि तुम्हारे पिताजी बीमार है, तो वे बालिया बाल के बाल करना मित्र ठहर गया, पूछे दादा बता दे सही ठीक है कि नहीं, भरो के भरो पता नहीं भाई हम जीव है कितने हैं कैसा क्या पता लगे। तो स्टेशन पहुंचा रह गया, अब तो चुनू जा रहा है, शेर जी गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चलने लगी, तो हनुमान बख्शी बोले कि तू जाओ तो कागज देना, कागज तो पूछ कर दूंगा, पूछा कि बड़ा बदमाश है मेरे से कहा ही लिया, मेरी जबान से ऐसा बोला जो जबान से कहा लिया, अब वो कहेंगे तो दूंगा तो जीते मिलेंगे कि नहीं, अपने हो गया से दूंगी, ऐसा बदमाश है मेरे जबान से निकलवा ही लिया, जीते मिलेगा नहीं है क्या हालत है बता दे, मैंने क्या पता कैसा बात कैसा है, कागज देना करता हूँ वो कहेंगे दूंगा, बदमाश बदमाश कल आ रही है इसे। तो मित्र होते हो मित्री बात जानते ही बना कागज देना, इसमें से क्या होगा क्या नहीं जानने वाले कहते नहीं, बताते भी नहीं, ये बातें बताने की नहीं है, लोग पैसा अपना नहीं बतावे, हमारे पास कितना रुपया कठरे छोड़ा है। एक शेर से पूछा कि शेर जी कहाँ सोया करते हो, कि घर में सोए दुकान में जो है रस्ते में सोए घाट हाट में सोए बाट में सोए घर में सोए सोए नहीं सोए, पूछने को मतलब था सेठ घर में सोए तो दुकान में चोरी कर रहे हैं, तो दुकान में सोए तो घर में चोरी कर रहे हैं, तो सेठ का हाट में सोए बाट में सोए घर में सोए बाहर सोए सोए न सोए किसी चतरा ही सूच कर दिया, अब क्या पता लोग कहाँ सोते हो आप। इस तरह से संत महात्मा होते हैं ऐसे बोलते हैं जो पता नहीं लगता, उन्हें पकड़ नहीं पाते, बात कहे तो पकड़ नहीं पाते। एक हरिणों के पीछे पारसी लगा हुआ जा रहा था, एक भजन करने वाले बैठे बाबा जी। बाबा जी से पूछा तो मारा हरिचंद्र गए हरिचंद्र गए तो क्या कहता है तुम, क्या कहता है कि इधर हरण गए कि जहा परिस्थिति नशा गुरु थे या गुरु थे सान परिस्थिति वो बैठे स्वकार यार थी किम प्रशिश बोना पोना और बार बार क्या पूछते हो, जो देख नहीं सकती वो तो बोलती नहीं, बोल नहीं सकती वो देखती नहीं, क्या कह पता बातों में बातों में उलझा देते हैं बाकी दूर निकल इस सतुरेश में बोले हम क्या बोले बताओ। यहाँ पर स्थिति नशा ब्रूते जो आंख देखती है वो तो बोलती नहीं, जब बोलती है वो देखती नहीं, अब देखे वो तो बोले को नहीं बोले तो देखे को नहीं कौन कह बता कौन कह है वो? बार बार क्या पूछता है। ऐसे संतों की भाषा होती बड़ी विचित्र, अधिक आदमी समझता नहीं। ये लोग बड़े चतुर होते हैं तो पाप करने में बड़े चतुर होते हैं, झूठ कपट करने में, बेईमानी करने में, धोखा देने में, सेल्फ टैक्स में, इनमें बड़े चतुर होते हैं, पर महात्मा संत होते हैं पारमार्थिक तत्व में बड़े चतुर होते हैं, क्योंकि वही धंधा वही पैसा काम ही वही धंधा ही होगी तो आपके धंधे में आप होशियार हो वे अपने धंधे में बड़े होशियार होते हैं, तो जल्दी ये पोल निकाल हरे राग में था नहीं ले सकता। इस बात से कहावत है कि मुंह डोले माथे रहो और बाजू रोख में रहो ठाकुर पत्तों को अब बाजू तो क्या की बात कर दिया ऐसे मुंडे मत रहो भरोसों को कैसे बाबा जी निकले भीतर में सीता जी जैसी जो वरदान दे दिया हनुमान जी महाराज के लिए कहते हैं कि महाराज जिद सिद्धि चाहता असबर दीन जानकी माता क्या अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी महाराज द्वारा असबर दीन जानकी माता माँ ने बेटा अजर अमर गुण निर्सुत हो बेटा तुम अजर हो जाओ ये हो जाओ ये जाओ माँ खुश हो गई दे दिया वरदान। उसी साथ रावण आया जो माँ नहीं पहचान सकी, बड़ी सीधी बात है ना, उसे तो रिद्धि सिद्धि का वरदान दे दे इतनी शक्ति आने शक्ति वाली जगत जननी जानकी माता जी रावण को पहचान नहीं सकी। अच्छे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं किसी पर संदेह नहीं करते, वे परीक्षा नहीं लेते, कोई सरल होते हैं सरल स्वभाव मन कुटिलाई जसा लाभ संतोष सदाई स्वभाव सीधा होता है सदा मस्त रहते हैं किसी कपटगाठ मन में नहीं सब सरल स्वभाव नारायण था भगत की लगे किनारे नाव कपट घाट मत में नहीं सबसे सरल स्वभाव सबके साथ सरलता बसा होता है कपट घाट मत में सीधे सीधे होते परंतु पारमार्थिक बातों में बड़े चतुर होते। जैसा आप व्यापार में चतुर हो कोई कुछ मेरे को कह दिया करे भाई तुम झूठ कपट मत करो कि बाबा जी मुफ्त में रोटी मिलती है तुम दुकान पर बैठो तो पता लगे हमारी कैसी कैसी आफत आती है किस तरह के कानून आते हैं किस तरह के आदमी मिलते हैं तुम बैठो तो तुम्हारे को आंख खोखड़ जाए पर मुंह पर रोटी खाओ आपको क्या पता तो सच्ची बात है भाई हमारे को क्या पता कैसी कैसी आफत आती है आप पे क्या क्या होता है। तो जैसे आप उसमें होशियार हो रहे ऐसे संतों की बात हमने सुनी बड़ी होशियार होते उनकी होशियारी बड़ी विलक्षण होती भगवान और भगवान के भगत ये दोनों मिले हुए रहते हैं आपस में इनकी संधि हुई हुई है बड़े होशियार से काम करते हैं संतों के पास जाओ कि महाराज आप कृपा करो। अरे कृपा भगवान करे भाई, साधु की कृपा करे, मैंने क्या कृपा भगवान कर, भगवान के पास जाओ संतों में जाओ। भीतर दुकान एक ऐसा उठो ग्राहक खरीद लो, वहां खरीद लो, लोग समझे बड़े क्या किया, दूसरी दुकान बताओ कपड़े मारे भी है उठो खरीद लो, वे गए वहां से खरीदो। अरे भीतर से वहां खरीदे वहां खरीदे न पापड़े हो जाएगा। अरे वो अपने लोगों में दीजिए बड़ा त्यागी है सब, देखो अपनी दुकान नहीं दूसरी दुकान बताओ। अरे दूसरे भाई बताओ ऐसे संत जितना गए भगवान का भजन करो, अरे भगवान को जो भी संतों का संग करो, अरे भीतर दुकान एक ऐसे चतुर होते बड़े होशियार होते, अपने अपने काम में सब होशियार होते, अपने अपने विद्या है तो मनुष्य ने प्राप्त किया है वो होशियारी लाओ, अपने वो चतुराई लाओ। जो चतुराई से नरकों में जाए वो चतुराई क्या काम की, अंदर का आंख जो फूटे कैसा अंदर बढ़िया है आंख का आंख फूट जाएगी कोई डाटा लेगा वो अंदर लगाएगा क्या, अंदर का आंख जो फूटे। तो जिस चतुराई से होशियारी से नरक मिले अधोगति हो जाए वो चतुराई क्या काम की, समझे। या लोग साधने बता दोनों लोगों को सिद्ध करने सा चातुरी चातुरी चतुराई चतुराई तो हुई है, तो लोग परलोक दोनों में कल्याण हो, जहाँ रहे वो आनंद ही आनंद रहे, ऐसा काम करे वो तो चतुराई नहीं तो मूर्खता ही है, समझे। यहाँ रहने वाले धन के लिए पाप करके नरकों की प्राप्ति कर रहे, धन तो रह जाए यहाँ नर्क बोलना पड़े, वो धन तो कोड़ी एक चले नहीं और पाप कोड़ी एक पास रहे नहीं। देखो तमाशा, जिस धन के लिए पाप किया वो धन तो कोड़ी एक साथ चले नहीं और पाप कोड़ी एक पीछे रहे नहीं, वो डर देगा। अब ये क्या बुद्धिमानी हुई, ये बुद्धिमानी नहीं है, बहुत बड़ी भूल है, बड़ी गलती है, बहुत नुकसान की बात है। परंतु आंख बंद ही थी पट्टी वही, हाँ जैसे घानी का बैल होता है ना, तो ये आंख मान जाओ जब बोल बोल फिर वही वही फिर ऐसे संसारी लोग है जो फंसा हुआ उसे फिरे। अरे भगवान ने कृपा कर मनुष्य शरीर लिया है जिसमें करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, वो करने की शक्ति उपकार करो, करने की शक्ति का काम को हित करो, दूसरों की सेवा करो और उनको सुख पहुंचाओ, धन दिया तो दूसरों निर्धनों की सेवा करो, आपके पास जो शक्ति दी है उस शक्ति रहित आदमियों की सेवा करो। आपके खाने का जितना आपका धन है, भागवत में नारद जी महाराज आए पांडवों के पास, पांडवों के पास नारद बाबा आए तो युधिष्ठिर ने बातें पूछी, तो ब्राह्मणों का धर्म बताया, क्षत्रियों का धर्म बताया, वैश्यों का धर्म बताया, शूद्रों का धर्म बताया, स्त्रियों का धर्म बताया, बहुत धर्म बताया, साधु सन्यासियों का धर्म बताया, ब्रह्मचारियों का, गृहस्थों का, वानप्रस्थों का, सन्यासियों का, सन्यासियों के धर्म की बड़ी महिमा गई कि भी सन्यासी त्यागी होते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं, इस अक्षर वेद विदो बद्ध वेद वेता जिसको अक्षर कहते हैं, अक्षर ब्रह्म परम परम अक्षर परमात्मा को प्राप्त कर देते हैं। तो ऐसी बात बताई कि उनका कल्याण हो जाए, बड़ी महिमा गाई।